शांति। ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा टीचर बन करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो ज्ञान का सागर है और हमारी पढ़ाई है बाबा की मुरली। तो पढ़ाई में मूल रूप से हम बाबा चार बातें बताते हैं। ज्ञान की पढ़ाई में चार मूल बातें, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान और समय का ज्ञान। ये चार प्रकार के अलग अलग चैप्टर्स है ज्ञान में। तो आज की बाबा की मुरली ज्ञान के कई राजों से भरी हुई है। आत्मा के बारे में बाबा ने क्या कहा, परमात्मा के बारे में क्या कहा, कर्मों के बारे में क्या कहा और समय के बारे में क्या कहा है। तो ऐसे अगर मुरली को पूरा नोट करते हैं तो सारी मुरली याद आ जाती है। तो आज की मुरली है पूरी ज्ञान की पॉइंट्स पर, और कितनी गहरी बातें एक एक पॉइंट की बाबा खोलते हैं। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 19/12/2024 है। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग, समय की पहचान है ये पुरुषोत्तम संगम युग, ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। प्रश्न है, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? शिव के साथ शालिग्रामों की भी पूजा होती है ना, तो बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? उत्तर, जो बाप समान होंगे, टीचर समान होंगे, उनकी महिमा गाई जाएगी ना। उत्तर, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, है ना, दूसरों को भी ज्ञान सुनाते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, तो बच्चे वो सारा ज्ञान धारण करके दूसरों को सुनाते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं उनकी भी महिमा उस बाप के साथ गाई जाती है। करण करावन हार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं। कई आत्माएं कहती है ना, इन्होंने मुझे कोर्स कराया तो मेरा कितना बड़ा कल्याण हो गया, इन्होंने मुझे दृष्टि दी, बस जैसे बाबा का अनुभव हुआ। तो बाबा कहते हैं करण करावन हार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, श्री कहते हैं ना, फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए, कैसे मेरा जीवन बदल गया। टीचर बनने बिगर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। जब तक दूसरों को ज्ञान नहीं देंगे, सेवा नहीं करेंगे, हर प्रकार की भी सेवा है, तब तक दूसरों से आशीर्वाद थोड़ी मिलेगी, दुआएं थोड़ी मिलेगी। दुआएं तब मिले जब औरों की सेवा करो। सेवाएं नहीं करेंगे अब समझेंगे हमको दुआएं मिले, तो नहीं मिलेगी। टीचर बनने बिगर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, पूछते भी हैं, समझाते भी हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। अब बाप को बच्चों ने जाना है ना, हम सब ने परमात्मा को सब ने जाना है। भल कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना। चलो कह भी दिया परमात्मा सर्वव्यापी है, पर फिर भी आखिर है कौन वो, पहचानना तो चाहिए ना। बाप कौन है पहचान कर फिर कहना चाहिए। पहले उनको पहचान दो, फिर उसके बाद क्या कहो, बाप का निवास स्थान कहाँ है, वो बाप कहाँ रहते हैं। बाप को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का भी पता कैसे पड़े। हम तो उनको जानते, उनके निवास स्थान का भी हमें पता है, पर जिनको बाप का पता ही नहीं उनके निवास स्थान का भी कैसे पता पड़े। कह देते हैं, फिर वो क्या कह देते हैं, उनको उससे पूछो भी ना तो कह देते हैं वो तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है ही नहीं। बाबा सिद्ध कर बता रहे, अगर कहते नाम रूप से न्यारा है इसका मतलब है ही नहीं। हाँ, उनका नाम रूप सबसे न्यारा है ये कहेंगे तो भाई क्या है उनका न्यारा नाम रूप, पर नाम रूप ही नहीं है तो बाबा कहते वो तो है ही नहीं, फिर गोया है नहीं। तो जो चीज है नहीं उनके रहने का स्थान भी कैसे विचार किया जाए। अपना नाम है न रूप है तो फिर उनका स्थान भी कुछ नहीं है, कोई गुण भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते फिर उनके रहने का स्थान भी कैसे विचार किया जाए। ये अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान भी समझाया है, मैं कहाँ रहता हूँ। बाप कहते हैं मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूँ, मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसको परम पिता कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानते हैं, आत्मा का भी कुछ पता नहीं तो परमात्मा का भी कुछ पता नहीं। बाप का नाम रूप देश काल अगर नहीं है फिर एक बात, तो फिर नाम रूप कुछ भी नहीं है तो फिर स्थान भी कहाँ से आया। फिर दूसरी बात, अगर नाम रूप देश काल भी नहीं है तो फिर उनको बच्चे कहाँ से आए। बच्चे तो उनको हो गए ना जिनको कोई नाम रूप देश काल सब हो, तो फिर बच्चे फिर कहाँ से आए। हम कहते हैं भगवान के बच्चे हैं, तो बच्चे हैं तो जरूर कोई है ना, तो बच्चों का तो फिर बच्चे फिर तो बाबा कहते हैं तो फिर बच्चों का फिर कहाँ से आए। बाप ही नाम रूप से न्यारा है तो बच्चे फिर कहाँ से आए। बच्चे हैं तो जरूर बाप भी है, अगर हम बच्चे हैं तो वो जरूर बाप भी है। सिद्ध होता है कि वो नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, बच्चों का नाम रूप है वे मैं आत्मा हूँ, फिर शरीर पर नाम पड़ता है। परमात्मा का भी जरूर नाम है, रूप भी है। बच्चों का भी नाम रूप है, भल कितना भी सूक्ष्म हो, ज्योति बिंदु है पर फिर भी कहेंगे तो सही ना नाम रूप है। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना आकाश। जैसे ये पोलार सूक्ष्म है वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं वो वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। वो वंडरफुल सितारा भी एक आत्मा है, लेकिन परम आत्मा है जिनको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही है परम धाम में, वो रहने का स्थान है। ऊपर नजर जाती है ना, भगवान जाने तो ऊपर देखते हैं, नजर ऊपर जाती है। ऊपर नजर जाती है ना, ऊपर अंगुली से इशारा कर याद करते हैं, तो जरूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी ना, कोई तो है। वो ऐसे नहीं कि कौन है वो पता ही नहीं और याद कर रहे हैं, कोई वस्तु होगी ना। परम पिता परमात्मा कहते तो है ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना इसे अज्ञान कहा जाता है। तो हम इसमें कई बार मिसाल देते हैं, तो जो कहते हैं नाम रूप से न्यारा, न नाम है न रूप है न धाम है न गुण है, तो फिर कहते हैं अच्छा वो क्या है, तो ये सब जो नहीं है ना वो बाकी परमात्मा है। नेमलेस फॉर्मलेस ये लेस 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 माना कम करते जाओ कम करते जाओ, तो बाकी जो बच्चे वो परमात्मा है। ऐसे भी किसने कहा, हमने कहा बाकी बच्चे जो परमात्मा का मतलब क्या, आप जो है वही बताओ ना, बाकी बच्चे फिर परमात्मा क्यों कहते? परमात्मा तो को तो पहले लाना चाहिए। जैसे आपको नाक को पकड़ना है तो नाक को सीधा पकड़ो ना, वो उल्टा हाथ घुमा करके फिर नाक को पकड़ने की क्यों कोशिश करो? तो नाम रूप ये कुछ भी नहीं है, तो फिर बाकी क्या? जो बाकी बचे वो है, और बाकी बचे का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये अज्ञान है। बाप को जानना इसे ज्ञान कहा जाता है। ये भी तुम समझते हो हम पहले अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे, अब समझते हो हम आत्मा है न कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है तो जरूर कोई चीज है। परमात्मा को भी अविनाशी के जरूर कोई चीज है, तब तो अविनाशी कहते हैं। अविनाशी कोई नाम नहीं है, ऐसे नहीं परमात्मा अविनाशी माना वो कोई नाम हो गया, वो कोई नाम नहीं है। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती, तो जरूर कोई वस्तु है जो विनाश को नहीं पाती है। तो बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है, मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं वो आत्मा अविनाशी है, वो बाप है। वो बच्चे बच्चे कहते हैं वो बाप अविनाशी है, तो बच्चे भी अविनाशी है। ये आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। ये खेल एक ही बार होता है। कौन सा खेल? ये खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। हर कल्प में एक ही बार होता है जब बाप अपना परिचय अपने बच्चों को देते हैं। मैं भी पाठधारी हूँ, बाबा कहे, कैसे पाठ बजाता हूँ ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहां गुलगुल होते हैं। ये तो बुद्धि में है ना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, ये पाठ चल रहा है। बाबा माना पिता, तो पिता का पाठ चल रहा है। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है। हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए, शांति धाम के बाद है फिर सुख धाम। शांति धाम के बाद दुख धाम नहीं है। इसलिए चाहे कोई आत्मा द्वापुर से भी आती है, दुख धाम शुरू होता है, लेकिन एकदम से उसको दुख नहीं मिलता है, पहले तो उसको सुख ही मिलता है। तो बाबा कहते हैं शांति धाम के बाद दुख धाम तो हो न सके। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है। ये देवी देवताएं अगर चेतन होते, अगर हमारे सामने चेतन में आते या होते, और इनसे कोई पूछे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम तो स्वर्ग के रहने वाले हैं, क्योंकि नरक में तो उनका पाँव नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए वो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब ये जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती है, मूर्ति से पूछेंगे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो मूर्ति थोड़ी कहेगी मैं स्वर्ग में रहने वाला हूँ। परंतु हाँ, चेतन में है तो अगर वो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। तो अभी ये जड़ मूर्ति तो नहीं कहेंगे कि हम स्वर्ग में रहने वाले हैं। तुम तो कह सकते हो ना कि हम स्वर्ग में रहने वाले थे, अभी हम फिर ट्रांसफर हो रहे हैं। ये ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं हमने ही 84 का चक्र लगाया, अब संगम पर आए हैं। तो बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष के बाद सतो प्रधान बनते हैं। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, सतो प्रधान हर 5000 वर्ष के बाद बनते हैं। सतो प्रधान भी नंबर वार कहेंगे, जो महाराजा महारानी होंगे वो तो पूर्ण सतो प्रधान, स्कॉलरशिप लिए हुए, फिर प्रजा उनसे कम, फिर दास दासी और कम। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान भी नंबर वार कहेंगे। तो ये सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है, ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को मिला हुआ है, क्योंकि मनुष्य माना वो शरीर को तो 84 का पाठ नहीं मिला, हर जन्म में शरीर अलग अलग है, पर आत्मा को ये पाठ मिला हुआ है, अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ, हम आत्मा वारिस है, परमात्मा की वारिस है, वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं, इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा बच्चा है, शिव बाबा का बच्चा है, वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को ये पक्का समझना है, हम सब आत्माएं मेल है, हम सब आत्माएं मेल है, पर व्याकरण हिंदी व्याकरण में आत्मा को फीमेल मानते हैं ना, आत्मा आई, आत्मा आया नहीं, तो आत्मा आई फीमेल है, लेकिन अगर उसकी गहराई में जाए तो हर आत्मा मेल है, क्योंकि हर एक को परमात्मा का वर्षा मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तो बाबा कहते हैं वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को ये पक्का समझना है, हम सब आत्माएं मेल है। कई पूछते ना आत्मा आत्मा भाई भाई क्यों कहते हैं, आत्मा आत्मा बहन बहन भी कह सकते हैं, तुम कहते हैं नहीं आत्मा भाई भाई ठीक है, क्योंकि हर आत्मा वारिस है परमात्मा का, और बच्चों को मिलता है, बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता, उनको तो दहेज मिल जाता है ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा ऐसे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को ये पक्का समझना है, हम सब आत्माएं मेल है, सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बेटों को, बच्ची को नहीं। आजकल तो मिल रहा है, ये भी बेटी भी हक लगाती है कि मुझे भी मिलना चाहिए, तो ऐसे तो बच्ची को नहीं मिलता, ऐसे भी नहीं आत्मा सदैव फीमेल बनती है। अब ये भी है, आत्मा कभी मेल बनेगी कभी फीमेल बनेगी, तो जिस जन्म में फीमेल है तो उनको नहीं मिलेगा क्या वर्षा, मेल है तभी मिलेगा, नहीं। तो हर आत्मा को मिलता ही है, चाहे वो शरीर फीमेल का लेवे या मेल का लेवे। ऐसे भी नहीं आत्मा सदैव फीमेल बनती है, बाप समझाते हैं तुम आत्मा कभी मेल का कभी फीमेल का शरीर लेते हो, इस समय तुम सब मेल्स हो। हाँ भाई बहने आप फीमेल नहीं समझना, मेल है, हम पुरुष है, आत्मा पुरुष है, इस समय तुम सब मेल्स हो, सब आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है, सब बच्चे ही बच्चे हैं, सबका बाप एक है, बाप भी कहते हैं हे बच्चों तुम सब आत्माएं मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो, फिर पाठ बजाने लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए। अब केवल मेल ही मेल हो सृष्टि पर, फीमेल कोई हो ही नहीं, तो ये कैसे चलेगा संसार, चलने के लिए मेल और फीमेल दोनों चाहिए। तो कल मेरे से किसने कहा कि पूछा कि भगवान को बड़ा कहेंगे या ड्रामा को बड़ा कहेंगे। अब भगवान ड्रामा को बड़ा कहता है क्योंकि ड्रामा अनुसार ही मैं आता हूँ, पर ड्रामा फिर बाप को बड़ा कहता है क्योंकि बाप आकर के दुनिया को बदलते हैं। फिर भले कहेंगे ड्रामा अनुसार, लेकिन कहेंगे तो सही ना, बाप आके बदलते हैं। तो ये भी जैसे माता पिता हो गए, ड्रामा माँ हो गई और परमात्मा बाप हो गया, इन दोनों का साथ है, ड्रामा के बिना तो बाप भी नहीं, बाप के बिना ड्रामा नहीं, तो इसलिए दोनों साथ साथ हैं, फिर भी बाप को आगे रखेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर पाठ बजाने के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो, इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। भल कहते तो हैं हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं हैं। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है, आत्मा को ये पक्का हो जाता है, अनेक बार वर्षा लिया है, आत्मा बाप को जरूर याद करती है, ओ बाबा रहम करो, आत्मा पुकारती है परमात्मा को, ओ बाबा रहम करो, बाबा अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे, देह सह देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। तो बाप ने समझाया है अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं, हर 5000 वर्ष बाद हम ये देवता कैसे बनते हैं, ये भी जानना चाहिए ना, कि जानना चाहिए। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है ये भी तुम समझते हो, कौन देगा स्वर्ग का वर्षा, कोई देहधारी थोड़ी देगा, ये भी तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, वो स्वर्गवासी नहीं बनता है, बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नर्क में ही आते हैं, स्वर्ग में भी नहीं आते, नरक में ही आते हैं, पर नरक में आकर के स्वर्गवासी बनाते हैं, खुद तो नरक में ही आते हैं। बाप तुमको बुला, हाँ तुम बाप को बुलाते भी नरक में हो, जबकि तुम तमो प्रधान बनते हो। ये तमो प्रधान दुनिया है ना, सतो प्रधान दुनिया थी, 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था लक्ष्मी नारायण का। तो इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। ये है, इस पढ़ाई को क्या नाम देंगे, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। तो हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, बच्चा बना और वारिस बना। तो बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूँ, तुम भाई भाई हो, तुम्हारे रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। हम सब आत्माएं वहाँ रहती है, इस सूर्य चांद से भी उस पार, कहाँ रहती है, इस सूर्य चांद से भी उस पार, वहाँ तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है। परंतु अब बाबा ने परम धाम की क्या व्याख्या की है, तो तुम्हारा वो घर तो है, परंतु वहाँ बैठ तो नहीं जाना है, बैठ नहीं जाना है, बैठ कर करेंगे भी क्या। अब चलो भाई घर गए, चलो नींद ही करना है ना घर में, यार कुछ क्या करेंगे, काम तो सब दफ्तर में होता है, काम तो सब जहाँ जॉब है जहाँ पर उनका काम होता है वहाँ जाएंगे, बाकी घर में तो आराम ही करेंगे। तो बाबा कहते हैं बैठकर क्या करेंगे वहाँ, वो तो जैसे जड़ अवस्था हो गई, जड़ अवस्था, बस सो जाओ। शिव बाबा कहेंगे परम धाम जाकर सो जाओ, वो तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। आत्मा जब पाठ बजाए तभी चेतन कहलाए, है चेतन परंतु पाठ न बजाए तो जड़ हुई ना। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, बाबा मिसाल देते जड़ कैसे हुए, अब यहाँ तुम खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पांव कुछ भी नहीं चलाओ, तो जैसे जड़ हो गए ना, एकदम जड़ होकर के खड़े हो जाओ, वहां तो नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि जड़ है, डेड साइलेंस है वहां, जड़ की तरह आत्मा, क्योंकि चुरपुरी नहीं है, डेड साइलेंस। तो कई बार होता है ना, मनुष्य की भी स्थिति ऐसी हो जाती है, लेटा पड़ा है लेकिन न हिल रहा है, न कुछ बोल रहा है, कुछ भी नहीं, बस लेटा, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेबल बन गया, जैसे सब्जी है पड़ी है, भले चेतन है, हाँ सब्जी भी तो चेतन है, परंतु क्योंकि उसमें है तो सही ना, लिविंग सेल्स है, लेकिन वो जड़ है, वो अपने आप तो नहीं चल सकती है ना, तो वो मनुष्य भी ऐसे वेजिटेबल उसको कहते हैं, उठाओ तो उठे, बिठाओ तो बिठाए, सुलाओ तो सुलाए, बस ऐसे खुद कुछ भी नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं परम धाम में भी आत्मा बस ऐसी जड़ है, वहां चुरफुर भी नहीं करती होगी। तो बबा कहते हैं आत्माएं जैसे कि जड़ है, पाठ कुछ भी नहीं बजाती है, शोभा तो पाठ में है ना, कर्म करे पाठ बजाए और अनुभव करे कुछ, तभी तो उनकी शोभा है। शांति धाम में क्या शोभा होगी, आत्माएं सुख दुख की भासना से परे रहती है परम धाम में, कुछ पार्टी नहीं बजाती तो वहां रहने से क्या फायदा। इसीलिए बाबा पूछे ना, मुक्ति श्रेष्ठ या जीवन मुक्ति श्रेष्ठ, तो हम बच्चे क्या कहेंगे, जीवन मुक्ति श्रेष्ठ, और सन्यासी क्या कहेंगे, मुक्ति श्रेष्ठ, मोक्ष, बस हमको आना ही नहीं है इस संसार में। तो बाबा कहते हैं कुछ पार्टी नहीं बजाती तो वहां रहने से क्या फायदा। पहले पहले तो सुख का पाठ बजाना है, हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए, कौन चाहेंगे हमको मोक्ष चाहिए, वही आत्माएं चाहेंगी जो सत्युग त्रेता में नहीं आती है, जो द्वापुर से आती है वही मोक्ष चाहेंगे, और जो कलयुग में है आती है वो उनको ना मोक्ष चाहिए ना कोई जीवन मुक्ति की कोई दुनिया चाहिए, वो समझते यही जीवन मुक्ति है, यही हमारे लिए सब कुछ है, खाओ पियो मौज करो कलयुग में आए तो। तो बाबा कहते हैं कुछ पार्टी नहीं बजाती तो वहां रहने से क्या फायदा। पहले पहले सुख का पाठ बजाना है, हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। तो कोई कहते हमको तो मोक्ष चाहिए, बुद्ध बुदा पानी में मिल गया बस, आत्मा जैसे कि है ही नहीं, बस मोक्ष चाहिए, जन्म मरण में आना ही नहीं है, ये संसार तो दुखमय है, क्योंकि सुख का अनुभव ही नहीं किया उस आत्मा ने, तो संसार को दुखमय ही समझते हैं। आत्मा जैसे कि है ही नहीं, कुछ भी पाठ न बजावे तो जैसे जड़ कहेंगे, चेतन होते हुए भी जड़ होकर पड़ा रहे तो क्या फायदा। पाठ तो सबको बजाना ही है, तो मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ कहा जाता है, एक्टर्स तो बहुत होते हैं लेकिन मुख्य तो हीरो हीरोइन का पार्ट कहा जाता है। तो तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है। आत्मा यहाँ पार्ट बजाती है, पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के दुख के राज्य में जाती है। अब वो बाप कहते हैं तुम बच्चे सबको ये पैगाम दो, भगवान ने इतना ज्ञान दिया, अभी ये पैगाम सबको दो, टीचर बन औरों को समझाओ, जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम होगा। सुना, औरों को नहीं समझाते तो बाबा कहते पद कम हो जाएगा, टीचर बनने बिगर किसको आशीर्वाद कैसे मिलेगी, किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना, कुछ भी देना है हाँ, ये अगर आपके मन में है तो फिर उनको खुशी होगी तो आपको आशीर्वाद देंगे तो उनको खुशी होगी ना। अंदर में समझते हैं ब्रह्मा कुमारी हमारे ऊपर बहुत दया करती है, जो हमको क्या से क्या बना देती है। यूं तो महिमा एक बाप की करते हैं, भले वो हमारी महिमा करे, हम तो यही कहेंगे ना, तो बाबा की महिमा, हम तो निमित्त है, तो हम वो महिमा स्वीकार भी नहीं करते, लेकिन वो कहेंगे नहीं आप नहीं होते तो बाबा कैसे मिलता। ठीक है, लेकिन महिमा तो उनकी है, तो इसलिए बाबा फिर बच्चों की महिमा करते हैं, बच्चे बाप की महिमा करते हैं। तो बाबा कहते हैं अंदर में समझते कि बीके हमारे ऊपर बहुत दया करती है, जो हमको क्या से क्या बना देती है। तो यूं तो महिमा तो एक बाप की ही करते हैं, वाह बाबा आप इन बच्चों द्वारा हमारा कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता ही है ना कल्याण, बाप करण करावन हार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं वो कल्याण, भगवान हमारा करते हैं, पर किसके द्वारा कराएंगे ना, तो हम बच्चों द्वारा कराते हैं। तुम्हारा कल्याण भी होता है तो तुम फिर औरों का कल्याण करते हो, औरों को फिर कलम लगाते हो, उनका भी कल्याण करते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है, फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वो भी राजा बनते हैं। माला बनती है ना, तो अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे, कौन सा नंबर बनेंगे, कौन सा नंबर बनेंगे। नवरत्न मुख्य है, बीच में है हीरा बनाने वाला वो बाप, तो अष्ट रत्नों में कौन सा रत्न बनेंगे, अष्ट रत्न बनेंगे, 100 रत्न, या 16,000, तो बाबा कहते कौन सा रत्न बनेंगे, तो 9 रत्न मुख्य है, बीच में है हीरा बनाने वाला, हीरे को बीच में रखते हैं, माला में ऊपर फूल भी है ना, अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं, जो डिनास्टी में आएंगे, जो राजाई में आएंगे उनकी वैजयंती माला बनती है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा जरूर, देखेंगे कैसे ये सब सजाएं खाते हैं, वो भी साक्षात्कार होता है, सजाएं खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे, हाँ बाबा साक्षात्कार कराते थे धर्मराजपुरी का भी, और वो उस समय वो ध्यान में होती थी, लेकिन ऐसे कांपती थी, ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे बताते कि जब वो साक्षात्कार करती थी धर्मराजपुरी का और उसको सजा मिल रही है ये अनुभव करती थी, तो फिर बाबा को वो सुनाती थी, बाबा हमने ये देखा, और वो ध्यान में होती थी और एक्शन भी करती थी, तो पता चल जाता है कि ये कहीं धर्मराजपुरी में पहुंची है, ऐसे दुख का भी जैसे चेहरा हो जाता है। तो फिर बाबा कई जो ध्यान में जाते थे उनको कहते थे, जो आपने साक्षात्कार किया ना अभी उसका ड्रामा बनाओ, वो ड्रामा बनाओ और ड्रामा बना के बना उसकी एक्टिंग करो, आपने क्या देखा साक्षात्कार में, धर्मराजपुरी कैसे होती है, तो फिर वो ड्रामा करते थे, सबको दिखाते थे कि ये हमने साक्षात्कार किया। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा जरूर, देखेंगे कैसे ये सब सजाएं खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे, ये भी गुप्त है, अभी नहीं पता चलता है, कोई सजाएं नहीं खाते, भले कितने पाप कर्म भी करते होंगे कोई, लेकिन अभी तो सब गुप्त है। आत्मा सजाएं कहाँ खाती है, ये भी ड्रामा में पार्ट है, सूक्ष्म देह तो मिलेगा ना जो सजाएं खाएंगी, ये भी ड्रामा में पार्ट है। गर्भ जेल में भी सजाएं मिलती है, जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो, तो गर्भ में आत्मा कहती है हाँ, जैसे धर्मराज को भी देखती है और फिर कहती है बाहर निकालो। बीमारियां आदि होती है वो भी कर्म का हिसाब किताब है ना, ये सब समझने की बातें हैं। बाप तो जरूर राइट ही सुनाएंगे ना, अभी तुम राइटियस बनते हो, राइटियस उनको कहा जाता है, किनको कहेंगे, जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं वो राइटियस है, राइट हैंड ताकत वाला होता है ना, लेफ्ट हैंड की ताकत कम होती है, तो जो बहुत ताकत लेते हैं बाबा से वो राइट हैंड है, वो राइटियस है। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, कितनी ताकत रहती है, हंगामे आदि की कोई बात ही नहीं है, सत्युग में कोई हंगामे नहीं होंगे, ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। तो तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है, एक जैसी ताकत तो नहीं पा सकते हैं, न एक जैसा पद पा सकते हैं, ये भी पहले से नूंद है, ड्रामा में अनादि नूंद है, सारा ड्रामा में अनादि नूंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, एक दो जन्म लिया और शरीर छोड़ा, जैसे मिसाल बाबा देते हैं, लास्ट में आए और विनाश हुआ, शरीर छोड़ा और गए, तो बाबा किसका मिसाल देते हैं, जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं, रात को जन्म लेते हैं सुबह को मर जाते हैं, सवेरे उठो तो देखो बत्ती के आगे लाइट के आगे इतने मरे हुए मच्छर पड़े हैं, गिरे पड़े। तो बाबा कहते हैं रात को जन्म लेते हैं सुबह को मर जाते हैं, वो तो अनगिनत होते हैं, अब उनकी गिनती क्या करेंगे, अनगिनत होते हैं। मनुष्य की तो फिर भी गिनती होती है, पहले पहले जो आत्माएं आती है उनकी आयु कितनी बड़ी होती है, तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले बनते हैं। किसी को कहो ना, कोई ऐसे हाथ दिखाते अपना, तो कहेंगे आपकी आयु तो बहुत लंबी है, आप 100 साल जिएंगे, वो बड़ा खुश हो जाता है, मैं 100 साल जीऊंगा, बड़ी आयु किसकी कहो तो खुश हो जाते हैं। आप किसको कहो तुम्हारी आयु बहुत छोटी है तो निराश हो जाएगा, इतनी छोटी आयु होगी मैं जल्दी मर जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे, सत्ययुग में 150 साल हमारी आयु होगी। तुम फुल पाठ बजाते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं, तुम कैसे फुल पाठ बजाते हो, पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पाठ बजाने, तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। तो बाप कहते हैं, अनेक बार तुमको मैं पढ़ाता हूँ, हर कल्प कल्प, कितने कल्प हो गए अनगिनत, तो इतनी बार बाबा ने हर कल्प में पढ़ाया है ना, मैं तुमको अनेक बार पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो, उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता है। अभी कोई बैरिस्टर बनता है, फिर कल्प के बाद बैरिस्टर बनेगा, ये भी तुम जानते हो। जो भी सबका पाठ है, वही पाठ कल्प कल्प बजता रहेगा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पाठ वही बजता है। जो कल्प कल्प बचता है, उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता, हरेक अपना पाठ बजाते रहते हैं। ये सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं, अब बना बनाया खेल है तो पूछते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, किसको आगे रखेंगे, पुरुषार्थ को या प्रारब्ध को? अगर कहेंगे सब ड्रामा में है, तो फिर बैठे रहो, कुछ भी काम नहीं करो, जो ड्रामा में होगा वो तो होगा ही। तो लेकिन फिर पूछते हैं, क्योंकि ऐसे तो मिलेगा नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए पूछते हैं, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? अब पुरुषार्थ, बाबा जवाब देते हैं, अब पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध मिलती नहीं। पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, उसका उत्तर यही है कि प्रारब्ध बिना पुरुषार्थ के होता नहीं। ये भी ड्रामा में नोंद है, अगर सचमुच प्रारब्ध में है तो वो प्रारब्ध भी आपको पुरुषार्थ कराएगी, इसलिए पुरुषार्थ फिर भी बड़ा हो जाएगा प्रारब्ध से। तो बाबा कहते हैं, अब पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध मिलती नहीं है, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार। तो सही उत्तर क्या है, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार। तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है, पुरुषार्थ कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं, आते भी हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रारब्ध नहीं मिलती है। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है, सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पाठ नूंधा हुआ है, आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पाठ है, हीरा भी बनती है तो फिर कौड़ी जैसी भी बनती है आत्मा, 84 का पाठ में हीरा भी बनती है फिर कौड़ी जैसा भी बनती है। ये सब बातें तुम अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पड़ता है तो क्या कहेंगे उसको, जो नापास हो पड़ता है उसके लिए कहेंगे ये बुद्धिहीन है, हाँ ये होशियार बालक नहीं है क्योंकि फेल हो गया, कहेंगे ये बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती है। अब इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स, हर एक का चेहरा एक न मिले दूसरे से। हाँ कई बार कहते हैं जाओ दुनिया में ढूंढ के लाओ, आप जैसा किसी का चेहरा है लेकिन ढूंढ के ले आओ, कोई का भी नहीं होगा हमारे जैसा चेहरा। हाँ किसी को कहा कि आपका ये आपसे बिल्कुल इसका चेहरा मिलता है, तो कहते है, कौन वो, फलाना, अच्छा मेरे जैसा चेहरा मिलता है तो मैं जरूर उसको देखूंगा, कौन है जो कहता है कि मेरे जैसा चेहरा मिलता है ना। परंतु बाबा कहते मिल ही नहीं सकता, चलो थोड़ा चेहरा तो मिलेगा पर आवाज नहीं मिलेगी, चलो थोड़ा चेहरा मिलेगा लेकिन हाइट नहीं मिलेगी, उसमें फर्क पड़ जाएगा, बहुत अंतर पड़ता। तो हर एक का अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं, तो ये वैरायटी फीचर्स है, वैरायटी झाड़ है, ये वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते हैं। कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं, बड़ के झाड़ का मिसाल भी इस पर है, उनकी शाखाएं बहुत फैलती है बड़ के झाड़ की। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा, आत्मा ही धारण करती है, आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर तो बदलते जाते हैं, आत्मा वही है, आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। ये नई बात है ना, तुम बच्चों को भी अब ये समझ मिली है। कल्प पहले भी ऐसे समझा था, बाप आते भी हैं भारत में, तुम सबको पैगाम देते रहते हो, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम न मिले, सबको पैगाम मिलेगा, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम न मिले, पैगाम सुनना भी सभी का हक है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना, फिर भी बाप के बच्चे तो बनेंगे ना, भले उनको मुक्ति का भी तो वर्षा मिलेगा ना, चलो पूरा ज्ञान न भी सुना, थोड़ा भी सुना परंतु पुरुषार्थ कुछ भी नहीं किया तो सत्युग में नहीं भी आएंगे, परंतु मुक्ति का तो मिलेगा वर्षा। बाबा कहते कुछ भी सुनेंगे ना, फिर भी बाप के बच्चे हैं ना, बाप समझाते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम ये पद पाते हो, बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाप तो सबकी सदगति करते हैं, गाते हैं अहो बाबा तेरी लीला, अंत में यही कहेंगे हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है, तो भगवान की ये लीला है, इनको कोई विरला समझते हैं। तो क्या लीला, कैसी लीला, ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला, लीला करते हैं ना भगवान, कर्तव्य करते हैं, तो ये लीला है भगवान की, पुरानी दुनिया को नया बनाने की लीला। तो बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है, मालूम होना चाहिए ना, अब ये मनुष्य ही जानेंगे कि कैसे पुरानी दुनिया को परमात्मा बदलते हैं। बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बातें समझाते हैं, बाप नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं, नंबर वार तुम बनते हो, स्कॉलरशिप लेने वाले तो नॉलेजफुल ही कहलाएंगे ना, होशियार है तभी तो पूरा नॉलेज बाबा का हब कर लेते हैं, तो वो तो स्कॉलरशिप लेंगे ही। रूहानी अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी स्मृति में रहना कि हम आत्मा मेल है, हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा, सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है, इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही नोंद है, पर फिर भी दोनों में से किसको पहले रखेंगे, पुरुषार्थ को, पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती, इस बात को भी अच्छी तरह समझना है। वरदान, कोई भी सेवा, आज इशारा वरदान सेवा पर है, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव, सच्चे मन से सेवा हो, सच्ची लगन से सेवा हो, तो वो ही सच्चे रूहानी सेवाधारी है। सेवा कोई भी हो लेकिन वो सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन न हो, अरे इतना काम मुझे करना पड़ता है, बाबा कहते चिड़चिड़ापन न हो, सेवा काम उतारने के लिए भी नहीं हो, हाँ ठीक है जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, नहीं, सो सेवा भी प्यार से करो, चिड़चिड़ापन भी न हो, काम उतारने का ही काम न करो, आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना, ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। काम चलाओ सेवा भी नहीं, हाँ ऐसे ही जल्दी जल्दी ये भी नहीं, मन से लगन से करना, वही सच्चे रूहानी सेवाधारी। स्लोगन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। और तो कोई जानता ही नहीं है इस पवित्रता को, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। आज का अव्यक्त इशारा 19 तारीख। इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। कौन से? एक स्वयं, स्वयं से संतुष्ट रहना ये सर्टिफिकेट, दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट संतुष्टता का, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। परिवार में जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं, उतने ही भक्त भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। तो इसीलिए हमें भी काम चलाओ नहीं बनना है, तो हमारे भक्त भी काम चलाओ हमारी पूजा करेंगे। और जैसे ये आप जानते हैं कि 18 जनवरी बाबा का व्यक्ति दिवस है, तो जनवरी का मास पूरा ही अव्यक्त मास है, लेकिन 18 दिसंबर से ही अव्यक्त मास हम अपना गिने, तो एक विशेष तपस्या वर्ष शुरू हुआ। जैसे कल से ये विशेष सेवा क्या करो, उसके लिए तपस्या में क्या सोचो, वो भी हर दिन का आ रहा है, तो कल से शुरू हुआ है। और आज 19 तारीख आज का बता रही हूँ, 18 जनवरी तक रोज ये भी कहेंगे, तो लक्ष्य रखना ऐसी हमारी तपस्या हो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो, जनवरी का मास यही लक्ष्य हो, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। उसमें स्वमान क्या रखो, मैं महान तपस्वी अशरीरी आत्मा हूँ, ये स्वमान रखो। दूसरा योग अभ्यास क्या करो, मैं आत्मा देह से न्यारी अशरीरी हूँ, परमात्म याद की अग्नि और तपस्या से यह विनाशी देह प्रकाश की काया में परिवर्तन हो रहा है, मुझ आत्मा की तपस्या के प्रभाव से वातावरण सुखमय बन रहा है। और धारणा क्या करो, मन का मुख का मोबाइल का संपूर्ण मौन, सुना, मन का मुख का मोबाइल का संपूर्ण मौन, ये धारणा करो आज। और चौथा चिंतन, व्यर्थ से मुक्त कैसे बने इसका चिंतन करो। ओम शांति।
ओम शांति। भोग से पहले एक सूचना दे रहे हैं, मधुबन निवासी बाबा का लाडला मधुबन के भाइयों के साथ बहुत ही हंसता बहलता रमणीक स्वभाव वाला सुब्रमण्यम भाई, उसको सभी मधुबन निवासी भी जानते हैं और आबू निवासी हॉस्पिटल के भाई बहने भी जानते हैं। सुब्रमण्यम भाई ने कल रात या कहेंगे आज प्रातः 1 बजे अपना भौतिक शरीर त्याग करके बाबा की गोदी में गए। और सुब्रमण्यम भाई 1976 में बड़ौदा में ज्ञान लिया था, 78 से अहमदाबाद में सरला दीदी के पास वहाँ पर ही सुख शांति भवन में अनेक सेवाएं की, और वहाँ पर रहते हुए प्यारी सरला दीदी और दीदी मनमोहिनी ने उनको मोहन सिंगल भाई के पास, क्योंकि उस समय मोहन सिंगल भाई अहमदाबाद में अपनी लौकिक जॉब करते थे, तो उनके पास उनको रखा। और 1994 में सुब्रमण्यम भाई यहाँ पांडव भवन में आए और यहाँ पर अपनी सेवाएं देने लगे। ब्रेड डिपार्टमेंट में किया और खास करके मुरली डिपार्टमेंट में लास्ट तक अपनी सेवाएं कर रहे थे। और अभी लास्ट में उनकी जो सेवा चल रही थी, जो कपड़े प्रेस होकर के आते उसको सॉर्टिंग करना, और इतना एक्यूरेट करता था कि कोई भी कपड़ा इधर से उधर ना हो, तो बहुत अच्छी तरह से। और फिर बड़े प्यार से गीत भी गा रहा है, गीत सुन रहा है, पुराने गीत चल रहे हैं, मस्ती कर रहता था। और अपने भाइयों को भी बहुत मजा आता था, उससे मीठी मीठी रूरुहान करते थे। और वो जब तक कोई उससे मिले नहीं, रूरुहान नहीं करे, तब तक उसका दिन नहीं बीतता था। ना कोई आएगा तो कुछ न कुछ बात ऐसे करेगा कि कोई ना कोई भाई आकर के उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, हंसी मजाक सदा में खुश रहता था। अभी काफी टाइम से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, पिछले एक महीने से ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट थे और धीरे धीरे उनका शरीर और डिटोरेट होता गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको बता रहे, उनको कैंसर की प्रॉब्लम थी, लेकिन उनको दर्द नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो प्रॉब्लम होते हुए भी अपना सबसे मिल गए। और अपनी अंतिम इच्छा थी कि मेरे को पांडव भवन में जाकर सबसे मिलना है। 3 दिन पहले यहाँ पर पांडव भवन में आए, सभी विभागों का चक्कर लगाया और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उन सबसे मिले और सबसे विदाई लेकर के आज प्रातः वह बाबा की गोदी में चले गए हैं। तो उस आत्मा के निमित्त हम अभी भोग से पहले 2 मिनट बाबा की याद में बैठ के श्रद्धांजलि देंगे और कल प्रातः 9:30 बजे उनको अंतिम संस्कार के लिए पांडव भवन में लाया जाएगा। ओम।